ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।
नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा और आप सुन रहे हैं ऑडियो पिटारा और मैं लेके आई हूँ शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की लिखी किताब चरित्रहीन। उसी रात को आंधी पानी का जोर घट गया। दिन भर अविश्रांत ऊधम करके उन्मत्त समुद्र प्रातः काल तक शांत हो आया, किंतु ऊपर का आकाश प्रसन्न नहीं हुआ, मुंह भारी किए रहा। सवेरे क्षण भर के लिए सूर्यदेव निकले जरूर, लेकिन ठीक तौर से ये न जाना जा सका कि वो जहाज के भय विहल अधमरे यात्रियों को वास्तव में सांत्वना दे गए अथवा आंखें लाल करके अंतर्ध्यान हो गए। इसी समय दिवाकर बाहर आकर एक कैनवस की आराम कुर्सी के ऊपर पैर फैलाकर लेट रहा। क्या जाने क्यों, आत्मग्लानि की तुषानल आज उसे पहले की तरह उतना नहीं जला रही थी। लज्जा का सागर भी आज उतना दुस्तर नहीं जान पड़ा। कहीं पर जैसे उसके किनारे नीले रंग के पेड़ पौधों से घिरा एक अस्पष्ट धुंधला सा किनारा दिखाई देने लगा। छाती पर का असहनीय बोझ जब इस तरह हल्का होता आ रहा था, तब स्थिरता से बैठकर दिवाकर किरणमयी के तर्क के ऊपर और एक बार अपनी प्रवृत्ति की कलम फेरने लगा। कल किरणमयी ने ये कहकर तर्क किया था कि हम यथार्थ अन्याय तभी करते हैं जब किसी को उसके न्याय संगत अधिकार से वंचित करते हैं। अतएव किसी काम में प्रवृत्त होने के पहले ये देखने की ज़रूरत है कि हम किसी के सच्चे अधिकार पर हस्तक्षेप कर रहे हैं या नहीं। फिर ये अधिकार बाहरी बातों में जैसे होता है, ठीक वैसे ही भीतरी मामलों में भी होता है। अपने ऊपर भी मनुष्य का एक सच्चा अधिकार है। अपना होने के कारण वो किसी के अधिकार की अपेक्षाहीन नहीं है, किसी की अपेक्षा तुच्छ नहीं है। उस अधिकार में भी बाहर के किसी आदमी का हस्तक्षेप सहन करना अपने ऊपर अन्याय करना है, मेरा यही कहना है। क्षण भर चुप रहकर किरणमयी ने फिर कहा था कि चोरी डकैती आदि करके हम जिस तरह दूसरे के अधिकार में हस्तक्षेप करके अन्याय करते हैं, वैसे ही शराबी को शराब पीने के लिए पैसे जुटाकर भी ठीक वैसा ही अन्याय करते हैं, क्योंकि तब हम उसके भले बने रहने के, ठीक चाल चलने के अधिकार में हस्तक्षेप करते हैं। दिवाकर चुपचाप सुनने लगा। ये देखकर किरणमयी ने फिर कहा था, यद्यपि सामाजिक मनुष्य का ये अधिकार अत्यंत व्यापक है और इसकी सीमा रेखा कहाँ है, कहाँ पर पैर रखने से अनाधिकार प्रवेश नहीं होता, इस बात को लेकर संसार में बहुत झगड़ा और बहुत मतभेद है। तथापि इस बारे में किसी को संदेह नहीं है कि इसकी एक सीमा अवश्य है। इस सीमा को लांघ जाने की क्षमता किसी में भी नहीं है, समाज में भी नहीं। समाज इस सीमा को लांघ कर दूसरों को ही नष्ट नहीं करता, अपने को भी कमज़ोर बना लेता है, ध्वंस कर देता है। अगर एक बार इस बात को सोचकर देखते कि तुमने किसी के सच्चे अधिकारों को पैरों से रौंदा है या नहीं, तो तुम्हें इस तरह मन भारी करके रहने की ज़रूरत न होती। लल्ला, मैं विधवा हूँ, मुझ पर किसी का न्याय संगत दावा नहीं है, और तुम भी अविवाहित हो, तुम्हारे हृदय के ऊपर भी किसी का अधिकार नहीं है। अतएव ये बात समझना तो कुछ कठिन नहीं कि मुझे प्यार करके तुमने कोई अन्याय नहीं किया, दिवाकर ने हद बुद्धि होकर कहा था। ये क्या कहती हो भाभी, अवैध प्रणय अगर अन्याय नहीं है तो फिर संसार में अन्याय कहाँ है? किरणमयी ने कहा था, अवैध कहाँ है, इसे तुम जो अवैध मान रहे हो सो ये तुम्हारा संस्कार है, कोई युक्ति नहीं है। अच्छा, ये तुम्हारा अवैध क्या चीज़ है, ज़रा सुनूं? दिवाकर ने जोश के साथ जवाब दिया था, जो विवाह के द्वारा सुपवित्र नहीं है, जिसे समाज स्वीकार नहीं करेगा, जिसे आत्मीय बंधु बांधव घृणा की दृष्टि से देखेंगे, वही अवैध है, ये तो सीधी सी बात है। किरणमयी ने हंसकर उत्तर दिया था, सीधी सी बात कहाँ है, ज़रा सोचकर देखने से सीधी बात भी ऐसी टेढ़ी निकल आती है कि दुनिया की अनेक टेढ़ी चीज़ें ही हार मान लेती हैं। तुमसे तो अनेक बार कह चुकी हूँ लल्ला कि तुम्हारा ये सुपवित्र ज्ञान केवल संस्कार है, युक्ति नहीं है। इसी दुनिया में स्त्री पुरुष के ऐसे अनेक मिलन को गए हैं जिन्हें किसी तरह पवित्र नहीं कहा जा सकता। मैं उदाहरण देकर बात को और बढ़ाना नहीं चाहती लल्ला, तुम्हारा जी चाहे तो इतिहास पुराण पढ़कर देख लो। अथच उन सब मिलनों को भी समाज ने स्वीकार किया था और विवाह के मंत्रों से भी सुपवित्र कर लिया था। लल्ला, हमारे इसी पाथुरिया घाट के घर के पास अगर कण्व मुनि का आश्रम होता तो शकुंतला ने जो करतूत की थी उससे केवल मुनि महाराज और उनके जाति भाई ही नहीं, सारे पाथुरिया घाट के लोगों को भी जातिच्युत होना पड़ता। लेकिन कहाँ, वो प्रणय कहानी पढ़ने में तो किसी सती साध्वी का भी मुख लज्जा से लाल नहीं हो उठता। ना ना, घबराओ नहीं लल्ला, मैं किसी सती साध्वी पर कटाक्ष नहीं करती अथवा इस काल और उस काल को भी मिलाई नहीं देती। आज का समय ही बना रहे और उस समय के वे लोग जहाँ हैं वहीं मज़े में बने रहें, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं। किंतु उस काल की शकुंतला को इस काल का कोई भी नर नारी क्यों अपने मन के भीतर बुरा या असत मानकर घृणा नहीं कर पाता? यही विचित्र बात है। क्षण भर चुप रहकर किरणमयी ने फिर धीरे से कहा था, जानते हो लल्ला, घृणा क्यों नहीं कर पाते? घृणा इसलिए नहीं कर पाते कि उनका मिलना चाहे जिस तरह हुआ हो, उन्होंने मिलने के आदर्श को विशुद्ध रखा था। उन्होंने घड़ी भर में ही जिस बंधन में अपने को चिर दिन के लिए बांध डाला था, उस बंधन के पक्के होने के बारे में उन्होंने अपने मन में कोई संशय, कोई संकोच नहीं रखा था। अगर रखते तो कालिदास उनकी कथा को चाहे जितनी बड़ी और चाहे जितनी मधुर बनाकर लिखते, वो किसी मनुष्य के हृदय को इस तरह नहीं खींच सकते। अब तुम जरा अच्छी तरह सोच कर देखो, असल बात किस जगह है? दिवाकर को एक भी बात अच्छी नहीं लगी। वो असहिष्णु होकर कह उठा, आदर्श चाहे जैसा हो, आजकल का समाज उसे स्वीकार नहीं करेगा, और समाज में जो स्वीकृत न होगा वो चाहे वैध हो चाहे अवैध, उससे समाज पर प्रहार ही होगा। समाज के भीतर रहकर समाज को चोट पहुंचाना और आत्महत्या करना एक ही बात है। किरणमयी ने कहा, लल्ला, समाज को चोट पहुंचाना और समाज के दंभ पर प्रहार करना एक बात नहीं है। तुमसे तो पहले ही कह चुकी हूँ कि सभी का एक सच्चा अधिकार होता है। समाज उद्धत होकर जब अपने अधिकार की सच्ची सीमा को लांघ जाता है, तब उसको चोट पहुंचानी ही पड़ती है। इस आघात से समाज मरता नहीं, उसके होश ठिकाने आते हैं, मोह छूट जाता है। चाहे लिखने पढ़ने के लिए हो, चाहे देश के लिए हो, समाज ने विलायत यात्रा को भी स्वीकार नहीं किया था। इसके लिए उसे बार बार चोट खानी पड़ी, तो भी उसके ऐसे कठिन प्राण हैं कि अभी तक नहीं निकले। क्या तुम इसके लिए समाज की बुद्धि विवेचना की प्रशंसा करते हो या इसे अच्छा मानते हो? दिवाकर ने कहा, ना, इसके लिए प्रशंसा नहीं करता, अच्छा समझने का कोई कारण नहीं है। किरणमयी ने कहा, निश्चय ही नहीं है, किंतु ये निसंशय उत्तर किससे पाते हो? अपनी बुद्धि और विवेचना से पा रहे हो, समाज से तो नहीं? दिवाकर ने उत्तेजित होकर कहा, किंतु सभी यदि अपनी बुद्धि और विवेचना से काम लेने लगें तो फिर समाज नहीं टिक सकता। किरणमयी ने कहा, मैं तो तुमसे इतनी देर से ये बात कहने की चेष्टा कर रही हूँ, सभी कामों में अपनी बुद्धि लड़ाने से जैसे समाज नहीं रह सकता, वैसे ही समाज भी अगर सब समय सभी कामों में अपना मत चलाना चाहे तो उससे भी मनुष्य टिक नहीं सकता। क्या मनुष्य गलती करना, अन्याय करना जानता है और समाज नहीं जानता? लल्ला, दोनों की ही एक सीमा बंधी हुई है। उस सीमा को चाहे मूढ़ता से, चाहे प्रवृत्ति की झोंक में, और चाहे बेजा हट के वश होकर हो, चाहे जिस तरह हो, लांघने से ही अमंगल होगा। उस अमंगल को रोकने की क्षमता तुम्हारे भगवान में भी नहीं है। दिवाकर ने इसके उत्तर में कुछ नहीं कहा। किरणमयी ने भी क्षण भर चुप रहकर कहा था, अथच ये सीमा किसी भी समाज में हमेशा एक ही स्थान पर स्थिर नहीं रहती, जरूरत के माफिक इधर उधर हटती रहती है। दिवाकर ने पूछा, कौन हटाता है? किरणमयी ने कहा, कोई नहीं हटाता। जिस नियम से विश्व ब्रह्मांड खिसकता है, उसी नियम से ये भी आप ही हटती खिसकती रहती है। हटने का पता तभी चलता है जब कोई उस पर आघात करता है। अब तक किरणमयी के इस सब युक्ति तर्क को इस भागने के अनुकूल मिलाने में दिवाकर का मन बाधा ही पा रहा था। एक तो इस काम के अत्यंत गर्हित होने में उसे लेशमात्र संदेह नहीं था, और दूसरे वो सारा अपराध विनीत भाव से अपने सिर लादने के लिए अपने को प्रस्तुत कर रहा था। किंतु जब उसने स्पष्ट समझ लिया कि ये गर्वित नारी इतने बड़े अपराध को भी अपराध नहीं मानना चाहती, बल्कि समाज को ही दोषी साबित करना चाहती है, तब उसे असहनीय हो उठा था। अथच कोई कड़ी बात कहना भी उसके लिए बड़ा कठिन काम था। इसी से उसने केवल कुछ व्यंग करके कहा था, यही जैसे हम लोगों ने समाज पर प्रहार किया है, अब देखना है कि समाज का कितना दर्प, कितना मोह दूर होता है। क्या कहती हो भाभी? सुनकर किरणमयी क्षण भर के लिए अवाक हो गई थी, किंतु तुरंत ही दोनों कोहनियों पर भार देकर ऊंची होकर उठकर दिवाकर के मुंह की ओर देखकर उसने जवाब दिया था, हमने कहाँ आघात किया है लल्ला? डर से भाग जाना और सामने खड़े होकर वार करना क्या एक ही बात है जो इससे समाज का घमंड चूर होगा? इससे तो उसका दर्प बढ़ ही जाएगा। लेकिन तुमने तो BA तक पढ़ा है ना, सर्टिफिकेट तो है ना तुम्हारे पास? कहकर उसने झट से लेटकर और पैरों से सिर तक चादर खींचकर सारी बहस के मुंह को दबाकर बिल्कुल ही बंद कर दिया था। लेकिन इस तरह तर्क थमता नहीं, वो रुंधे हुए स्रोत की तरह फूलकर आवर्त रचता रहता है, और चाहे देर में हो चाहे जल्दी, रुकावट को तोड़फोड़ ही डालता है। हुआ भी यही था। ये रुका हुआ तर्क केवल किरणमयी के मन में ही उग्र नहीं हुआ था, नम्र प्रकृति वाले दिवाकर के मन में भी चक्कर काटता फिर रहा था। खासकर किरणमयी के वे आखिरी शब्द, तुमने बीए तक पढ़ा है ना? यद्यपि लिखने पढ़ने का अभिमान कभी दिवाकर के मन में स्पष्ट रूप से स्पष्ट आकार में नहीं था, किंतु बुद्धि की प्रतियोगिता में इस दर्प से भरी नारी के मुख से निकले हुए इतने बड़े लांछना के वाक्य ने उसके अंतःकरण को युद्ध के लिए एकाग्र कर दिया था। परंतु वो भी ये सोचकर ठीक न कर पाया कि किस तरह से युद्ध की घोषणा करें, किस तरह इस नीरवता को तोड़े। और भी एक बात ये हुई कि आज दो दिन की लगातार खींचतान से उसके प्राण होठों पर आ गए थे, नाक में दम हो गया था। बाहर जैसे आंधी पानी शांत नहीं देते थे, वैसे ही भीतर की आत्मग्लानि भी चैन से बैठने नहीं देती थी। कहीं भी किसी और टिकने की राह न खोज पाकर आज जब वो खलासी का हाथ पकड़कर किरणमयी के कैबिन के सामने उपस्थित हुआ था, तब उसके थके हुए शरीर और मन ने भीतर ही भीतर सुलह की ही प्रत्याशा की थी। किंतु बीच में जो ये बहस की आंधी उठ खड़ी हुई, उसने केवल उसी को एक अप्रीतिकर और दुरतिक्रम्य स्थान पर नहीं पटक दिया, किंतु उसकी स्वस्थ होने की अस्पष्ट आशा को भी मिट्टी में मिला दिया। बाहर धीमी पड़ी हुई आंधी के दबे हुए क्रंदन को भेद कर ऊपर जहाज के घंटे में 12 बज गए। तब तक दिवाकर गर्म लंबी सांस छाती में छिपाए स्तब्ध बैठा रहा, लेकिन एकाएक जब दबे गले से किरणमयी ने पुकारा, लल्ला, तब दिवाकर चौंक उठा। उसके सारे हृदय में भय और आशा ने एक साथ ही हलचल मचा दिया। वो चटपट बोल उठा, क्या है भाभी? किरणमयी ने कहा, तुम लौट ही जाओ, दिवाकर जोर देकर बोला। किसी तरह नहीं, किरणमयी ने कहा। नहीं क्यों? बिना समझे अगर एक अन्याय कर बैठे हो तो क्या जीवन भर उसका बोझ सिर पर लादे फिरोगे? इसकी तो कोई ज़रूरत मैं नहीं देखती, दिवाकर ने कहा। तुम नहीं देखती पर मैं देखता हूँ, इसके सिवा क्या लौट जाने से ही बोझ सिर से उतर जाएगा? किरणमयी ने कहा, ये तो मैं नहीं कहती कि आज ही उतर जाएगा, लेकिन बाद को उतर भी जा सकता है, दिवाकर ने कोमल आवाज में पूछा। लेकिन जाऊंगा कहाँ? किरणमयी ने कहा, अपने पर आत्मीय स्वजनों के पास, अपने उपेन दादा के पास, सभी तो हैं तुम्हारे। दिवाकर ने क्षण भर चुप रहकर कहा, तुम जो सब मेरे कहती हो वो मेरे नहीं हैं, और ये बात तुम भी जानती हो। हैं केवल उपेन दादा, तुम क्या उनके पास लौट जाने को कहती हो? बात को मुंह से निकालने में भी दिवाकर मन ही मन कांप उठा, और ये पार्श्वचारिणी से छिपा नहीं रहा। उसने मन ही मन क्रूर हंसी हंसकर कहा, अच्छा तो है, उन्हीं के पास जाओ। दिवाकर जरा चुप रहा, फिर धीरे से बोला, तुम उनको अच्छी तरह नहीं जानती, मैं जानता हूँ। सो भी नहीं, अच्छी तरह शायद उन्हें जाना ही नहीं जा सकता, किंतु मैं बचपन से उन्हीं के हाथों आदमी बना हूँ, इसलिए इतना समझ पाया हूँ कि उनके सामने जाकर खड़े होने की अपेक्षा आग में फांद पड़ना मेरे लिए सहज है। एकाएक किरणमयी चकित हो उठी, मुंह फिराकर दिवाकर की ओर देखते हुए बोली, क्यों, वो क्या इतने निष्ठुर हैं? ये समझाकर कहने से भी कि दोष तुम्हारा नहीं है, क्या वो तुमको दंड देंगे? ये कभी संभव नहीं हो सकता लल्ला। दिवाकर ने किरणमयी के इस आकस्मिक उत्साह को देखा, दीवार पर जो रोशनी जल रही थी उसी ओर ताकते हुए अन्य मनस्क की तरह उसने धीरे से कहा, उनसे कोई बात समझाकर नहीं कहना पड़ता, न जाने किस तरह वो सब जान लेते हैं। अवश्य ही तुम्हारी तरह मैं ये नहीं सोच पाता कि इसमें मेरा दोष नहीं है, किंतु यदि तुम्हारी ही बात ठीक हो, यदि सचमुच ही मैं निर्दोष हूँ, तो जिस दिन उनके सामने जाकर खड़ा होऊंगा उसी दिन वो अवश्य जान लेंगे, उस दिन मेरा सच्चा विचार हो जाएगा। तुम अभी दंड की बात कह रही थी, किस तरह मैं जान सकता हूँ भाभी कि वो मुझको क्या दंड देंगे? उन्होंने किसी दिन मुझे दंड नहीं दिया। आज आगे वो बोल न सका और दोनों हथेलियों से आंखें मूंद कर चुप रह गया। किरणमयी ने कुछ नहीं कहा, दोनों आंखें फैलाकर वो उसके मुंह की ओर ताकती रही। उसके हृदय के भीतर जो उथल पुथल मची हुई थी उसे केवल उसके अंतर्यामी ने ही जाना। क्षण भर के बाद दिवाकर ने बात की, वो अत्यंत व्यथित स्वर में कहने लगा, मैं किसी दिन भी सजाकर ठीक तौर से नहीं बोल सकता, आज भी अपने मन की बात तुमसे नहीं कह सकूंगा, लेकिन तुमसे मेरा आग्रह के साथ अनुरोध है कि तुम उनकी बात न चलाओ। एक दिन शायद मुझे सब सहनीय हो जाएगा, लेकिन उनकी बात कैसे सह सकूंगा? जरा रुककर फिर कहा, आज दो दिन से मैं केवल उन्हीं के बारे में सोच रहा हूँ। जिस दिन हम लोग कलकत्ते पहुँचे भाभी, उस दिन केवल एक बार मेरी कोठरी के बाहर खड़े होकर उन्होंने पूछा था कि किताबें इताबें सब रख चुका रे? मैंने कहा हाँ। तब उन्होंने केवल इतना ही कहा कि देख, सावधानी से रहना और जब किसी चीज़ की ज़रूरत हो चिट्ठी लिखकर बता देना, समझा? इतना कहकर वो मेरे पैरों के पास एक नोटों की गड्डी फेंक कर चले गए। तनिक थमकर दिवाकर ने कहा, मैं केवल यही सोचता हूँ कि जो दंड मैंने उनको दिया है उसकी तुलना में वो कितना सा दंड दे सकेंगे। दिवाकर की दोनों आंखों से टपटप आंसू टपकने लगे। उज्जवल दीपक के प्रकाश में वे चमक उठे और स्तब्ध बैठी हुई किरणमयी पत्थर की मूर्ति की तरह देखती रही। क्षण भर बाद दिवाकर ने कुर्ते की आस्तीन से अपने आंसू पोंछकर गंभीर स्वर में कहा, कल तुमने कहा था कि उपेन दादा का सिर नीचा कर दोगी। उस रात को तुम दोनों में क्या बातें हुई? किस लिए क्रोध में ये बात तुमने कह डाली, ये मैं अब तक न समझ पाया। पर इसका कारण कुछ न कुछ ज़रूर है, किंतु वो चाहे जो हो, सिर नीचा करने का दुख कितना बड़ा है ये अगर तुम जानती भाभी तो ऐसी बात जबान पर भी न लाती। इसके सिवा अगर उनका सिर नीचा ही हो जाए तो फिर अपना सिर किधर देखकर उठाओगी? तुम ये चेष्टा ना करो। मैं तुमसे जोर देकर कहता हूँ कि जब तक उपेन दादा स्वयं झुककर हम लोगों की तरफ ना देखें तब तक स्वयं विधाता में भी उनका सिर नीचा करने की क्षमता नहीं है। लेकिन ये बताने का प्रयोजन नहीं था, वो स्वयं ही सब जानती थी और इसी कारण अब तक एक भी शब्द न कहकर ध्यान देकर श्रद्धा के साथ सुन रही थी। बात समाप्त होते ही जैसे सपना देख रही हो इस तरह पूछ बैठी, तुम क्यों उनकी इतनी भक्ति करते हो लल्ला? भक्ति? ये कैसा अद्भुत प्रश्न है। दिवाकर बुद्धि भ्रष्ट की तरह कुछ देर तक किरणमयी के मुंह की तरफ देखता रहा। अंत में दोनों हाथ जोड़कर सिर से लगाकर धीरे से बोला, भक्ति तो उनकी सभी करते हैं भाभी। इसके बाद इसी जगह ये आलोचना बंद हो गई थी। सारे तर्क वितर्क, वाग्वितंडा, समाज और संसार का भला बुरा, व्यक्ति और समष्टि का अधिकार, अपना और पराया, सुख दुख, सभी जैसे इसी जगह एकाएक एक ही फूंक में बुझ गए थे। उस गहरी रात में ये दोनों विपरीत प्रकृतियाँ किसी अदृश्य आकर्षण से ऐसी एक जगह पर आकर मिल गईं जहाँ विरोध नहीं था, जहाँ बोलने की अपेक्षा सुनने की, समझाने की अपेक्षा समझने की आकांक्षा ही प्रबल हो उठी, जहाँ बुद्धि काम नहीं देती, अनुभव करना होता है, वाणी नहीं चलती, चुपचाप सुनना होता है। उसी जगह आकर दोनों ही दृश्य लबालब परिपूर्ण होकर स्तब्ध हो गए। जिस संधि की प्रत्याशा को मिट्टी में मिला समझकर दिवाकर मन ही मन खिन्न हो रहा था, वही संधि अपने समस्त दलबल को लेकर किसी गुप्त मार्ग से कब चुपचाप लौटकर हाजिर हो गई, इस पर दोनों जनों में से किसी ने लक्ष्य भी नहीं किया। तड़के आँख खुलने पर दिवाकर ने कल की तरह आज भी सुप्त किरणमयी का एक हाथ अपनी छाती के ऊपर पड़ा हुआ देखा, और यद्यपि उससे पारिजात पुष्प की माला का भ्रम नहीं हुआ तथापि उसने काले नाग का भय भी उत्पन्न नहीं किया, बल्कि आज उठकर बाहर आते समय उसने उस हाथ को धीरे से ममता के साथ अलग कर दिया। सोती हुई किरणमयी को खबर नहीं हुई कि दिवाकर बिस्तर छोड़कर सवेरे कब उठ गया, इसलिए जागते ही वो दिवाकर के लिए उद्विग्न हो उठी। कल रात को बातों ही बातों में किरणमयी बहुत सी बातें जान गई थी। जब से किरणमयी को बिल्कुल निश्चित रूप से ये मालूम हुआ कि दिवाकर सचमुच कितना असहाय है और अपने उपेन दादा से बिछुड़ना उसके लिए कैसी मर्मभेदी दुर्घटना है, तब से उसके नारी हृदय का निभृत अंतस्थल जरा भी चैन नहीं पा रहा था। इस सरल, विनीत, सत्यवादी और सच्चरित्र युवक को उसके जीवन के प्रारंभ में ही अकारण पथ भ्रष्ट कर देने का अपराध नींद में भी उसको चुभता रहा। इसी कारण आँख खुलते ही उसने एक अभिनव स्नेह के साथ, वेदना के साथ इस निरपराध अभागे युवक की ओर पहले ही मुंह घुमाकर देखा तो मालूम हुआ कि दिवाकर अपनी जगह पर नहीं है। बाहर खोजा तो वो वहां भी न था। जहाज के बॉय को बुलाकर खोजने को कहा तो उसे भी नहीं मिला। तभी से किरणमयी उत्कंठा के साथ राह देख रही थी, किंतु आज इस उत्कंठा में बहुत दूर से आती हुई मृदु सुगंध की तरह एक अस्पष्ट आनंद का आभास पाकर उसका सारा अंतःकरण पुलकित हो रहा था। वो अत्यंत तुच्छ दिवाकर, जिसे उसने कभी प्यार नहीं किया, कभी प्यार कर नहीं सकती, बुद्धि के विपाक से अब उसी के साथ रहना होगा, प्रेम का अभिनय करना होगा, इस धिक्कार को उसके अंतर्यामी ने ही सुना। फिर यहीं इसकी समाप्ति नहीं होती। इस दिखावटी प्यार की खींचतान एक दिन रुक ही जाएगी। ये कपट लीला एक दिन बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगेगी। ये सीख डॉक्टर अनंग मोहन उसे अच्छी तरह दे चुका है। उस बुरे दिन में जो जानलेवा घृणा का फंदा गले में जोर से कसता जाएगा, उसे वो किस अस्त्र से काटेगी? ये दुश्चिंता उसे उठते बैठते पीड़ा दे रही थी। किंतु कल गहरी रात में उपेंद्र के राज सिंहासन के तले बैठकर जब दोनों के संधि पत्र पर हस्ताक्षर हो गए, तब नींद खुलने पर इस लड़के के लिए की करुणा की व्यथा जैसे इधर किरणमयी को पीड़ित कर गई, वैसे ही इस अवश्य होने वाली घृणा से छुटकारा पाकर भी उसने चैन की सांस ली। अकेले कैबिन के भीतर बैठकर सांस छोड़कर वो बारंबार यही कहने लगी कि अब मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है। जिसे मैं प्यार नहीं कर सकूंगी, उसे कम से कम स्नेह देकर ही उसके मन की ग्लानी को बहुत कुछ धो सकूंगी। तो भी एक भय उसके मन में झांकने लगा, वो यही कि कहीं अग्नि के प्रलोभन को संभाल न पाकर एक दिन दिवाकर पतंग की तरह जल मरने को कमर कसकर तैयार न हो जाए। ये तो किरणमयी से छिपाना था कि उसके रूप के आकर्षण की कैसी दुर्निवार शक्ति है। उसे अपने मृत स्वामी की याद आ गई। वो शुष्क कठोर साक्षात विद्या के अभिमान की मूर्ति थे, विज्ञान के सख्त बेड़े से घिर कर जो सावधानी के साथ दिन रात अपने स्वातंत्र्य की रक्षा करके चलते थे, वही स्वामी। असल में वो उनके निकट तो एक दिन भी नहीं जा सकी, तो भी दो दिन कट ही गए थे। लिख पढ़कर, खाना बनाकर, सास की भगचक सहकर उसका दिन का समय कट जाता था और रात को परकाल के विरुद्ध लड़ झगड़ कर, नालिश करके, व्यंग करके, घर की दीवारों तक को विषाक्त करके, क्लांत जर्जर होकर किसी समय वो सो जाती थी। फिर सवेरा होता है, फिर रात आती थी। इसी तरह महीने के बाद महीना, साल के बाद साल बीतता चला गया था। घर के दरवाजे पर भीख दो माँ कहकर कभी किसी भिखारी ने प्रवेश नहीं किया। कैसी हो कहकर पड़ोसी ने खबर नहीं पूछी। एक दिन के लिए भी सूर्य की किरणों ने प्रकाश नहीं डाला। एक घड़ी के लिए आकाश की वायु ने भूलकर भी प्रवेश नहीं किया। तो भी लंबे 10 साल बीत गए थे। उसे अपने माता पिता की तो याद ही नहीं है। सिर्फ इतना याद आता है कि बाल्यकाल में कालना के पास एक छोटे से गांव के एक निरानंद मातुल ग्रह से बाहर होकर बंगला, संस्कृत, अंग्रेजी वो उसे पढ़ाते थे। अगर कभी पाठ नहीं याद कर पाती थी तो तिरस्कार करते थे, मार भी बैठते थे। रूठती थी तो मनाते नहीं थे, रोते रोते सो जाती थी तो उठाकर खिलाते नहीं थे। यही तो उसके वधु जीवन का इतिहास है। सास की परीक्षा और भी कठोर थी, उसके पास छोटी से छोटी गलती की भी क्षमा नहीं थी। अघोर मई ने अपने रसोई घर के चिमटा, करछुल, चमचे से लेकर जलती हुई लकड़ी तक के चिन्ह इस बालिका वधु के शरीर में बना दिए थे। एक दिन किसी अपराध का दंड उन्होंने ये दिया था कि पकड़कर इस बालिका के बाल काट डाले थे। दुख के मारे बहू जब चौकी के एक कोने में मुंह ढक कर फूल फूल कर रोने लगी, तब अघोर मई ने उसकी पीठ पर जलती लकड़ी का खोंचा देकर चुप रहने को कहा। उस जली हुई जगह के अच्छे होने में महीने भर तक किरणमयी को कष्ट भोगना पड़ा था। एकाएक जैसे वो घाव ही जल उठा, जिससे क्षण भर के लिए चंचल होकर वो फिर स्थिर हो गई। किशोर अवस्था पार होकर कब उसने जवानी में पैर रखा था, इसे वो याद नहीं कर पाती। उस समय की याद दिलाने वाली कोई बात भी हो तब न याद आए। जान पड़ता है वो उषा की तरह चुपचाप ही प्रभात के उज्जवल प्रकाश में खिल उठी थी। जवानी में बिना जाने, बिना किसी अहंकार के जब उसके शरीर का अंग प्रत्यंग सौंदर्य से परिपूर्ण होने लगा, तब वो स्वामी के साथ सूक्ष्म विचारों में ही उलझी रही। ये बात एक बार भी सोचने का अवकाश उसे नहीं मिला कि क्यों उसका दैहिक निर्यातन बंद हो गया और क्यों वो गृहिणी या घर की मालकिन बन गई। स्वामी ने कहा, सुख ही जीव का एकमात्र लक्ष्य है और सभी उपलक्ष्य हैं, इस लोक में या परलोक में, अपना या अन्य चार आदमियों का, स्वदेश का या विदेश का, किस तरह सुख चढ़ाया जाए यही जीवन का कर्म है। और चाहे जानकर हो चाहे बिना जाने, इसी चेष्टा से जीव का सारा जीवन परिपूर्ण रहता है। और यही एकमात्र तराजू है जिस पर रखकर सब भले बुरे को तोला जा सकता है। अपना है या पराया, ये न देखना किरण, तुम केवल यही समझकर देखने की चेष्टा करना कि इससे सुख की मात्रा बढ़ती है या नहीं। किरण ने इस पर कहा, लेकिन ये मैं कैसे जानूंगी कि मेरे काम से संसार के सुख की मात्रा बढ़ रही है? सुख का रूप तो सबकी दृष्टि में एक नहीं है। हारान बाबू ने अपने ज्योतिहीन नेत्रों की दृष्टि क्षण भर के लिए मकड़ी के जाले और धुएं की कालिक से भरी छत की धन्नियों और आंखों पर टिकाए रहकर कहा, खंड खंड करके देखने से अवश्य एक नहीं है, किंतु समग्र भाव से एक ही है, तुमको उसी के ऊपर विचार करना होगा। किरणमयी के लिए सुख का कोई रूप, खंड या समग्र, सुस्पष्ट न था। वो असहिष्णु हो उठी, बोली, खंड खंड करके, समग्र करके, ये सब कहने भर की बातें हैं। मनुष्य बहुत समझे तो केवल इतना ही समझ सकता है कि अपने को सुख कैसे हो, वो भी सब समय सब अवस्थाओं में ठीक तरह से नहीं समझ पाता। जब अपने ही संबंध में मनुष्य निर्भ्रांत नहीं है, तब सारे संसार की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेने का साहस और चाहे जिसमें हो, मुझ में तो नहीं है। वे उस पार की जूट मिल के मालिक काजी लोग शायद सोचते होंगे कि कि अगर संभव हो तो काशी के सभी मंदिरों तक को तोड़कर गिराकर जूट मिल बना दे सकने से ही मनुष्य के सुख की मात्रा बढ़ेगी। तो क्या सभी यही सोचेंगे? जब तक तुम मुझे ये न समझा दे सकोगे कि सुख क्या चीज है, तब तक मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनूंगी, कहकर किरणमयी जाने लगती। तब उसका हाथ पकड़कर हारान रोकते और कहते, इतना पढ़ने लिखने के बाद भी अगर तुम इतने थोड़े में ही खफा हो उठोगी तो समस्त ही मिथ्या हो जाएगा। देखो किरण, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं भी ठीक तौर से नहीं जानता कि सुख क्या पदार्थ है। ये भी मैं नहीं जानता कि किसी देश में किसी ने कभी उसे जाना था या नहीं। जान पड़ता है वो जाना ही नहीं जा सकता। हमारे देश में बहुत पहले ही तीन तरह से दुख दूर करने की चेष्टा की जा चुकी है, पर उन तीनों को बाद देकर जो चीज़ पाई जाती है वही सुख है, ये कहने से भी काम नहीं चलता। इस पर किरणमयी असहिष्णु होकर कह उठती कि जब कुछ भी कहा नहीं जा सकता, तब किसी के सुख की कल्पना पर हंसना जैसे असंगत है, वैसे ही साधारण भाव से संसार के सुख का परिमाण बढ़ाने की चेष्टा भी पागलपन है। भले बुरे को तौलने मापने के पहले तुम्हारे तराजू की डंडी एकदम सही होनी चाहिए। मैं तो ये नहीं सोच पाती कि उसे तुम किस आदर्श से निर्भूल करोगे। हारान क्षण भर चुप रहकर हताश होकर कहते, मैं जानता हूँ किरण कि तुम्हारे मन की गति किस ओर झुकी हुई है, किंतु जब तक तुम परकाल की कल्पना, ईश्वर की कल्पना आदि का जंजाल अपने मन से बुहार कर दूर ना कर पाओगी, तब तक तुम्हारे मन में संशय रह ही जाएगा। ये समझकर भी नहीं समझोगी कि सुखी जीवन का अंतिम उद्देश्य है और सुखी चरम सार्थकता है। तुम्हारे मन में केवल यही होता रहेगा कि कौन जाने शायद और भी कुछ है, अथच इस और कुछ का पता कभी ना खोज पाओगी। ये तुम्हें व्यस्त कर रखेगा लेकिन गति नहीं देगा, आकांक्षा जगा देगा पर तृप्ति नहीं देगा, राह की कहानी ही सुनाएगा पर कभी राह नहीं दिखा पाएगा। इसी तरह इस शिक्षा और इस गृहस्थी के बीच किरणमयी सयानी हुई है। आज उसे एक एक करके सब बातें याद आने लगी। इस तरह उसके सोचने की धारा जब वर्तमान दुख को बहुत पीछे छोड़कर लांग कर बीते हुए दिनों के अथाह अतल दुख सागर में डूब कर गोते खाकर मार रही थी, इसी समय कहीं से दिवाकर सूखा उतरा हुआ चेहरा लिए कैबिन के भीतर आया। उसे देखते ही किरणमयी की दुस्वप्न की खुमारी पल भर में ही दूर हो गई। उसने अपने चेहरे को स्नेह हास्य से उज्जवल करके तिरस्कार के स्वर में कहा, मामला क्या है बताओ तो लल्ला, इस तरह क्यों घूमते फिर रहे हो? खाना पीना क्या कुछ ना होगा? अच्छे लड़के हो भाई। उसके कंठ स्वर से इतने दिन बाद दिवाकर एकदम चौंक पड़ा। अकस्मात जान पड़ा जैसे कितने ही सैकड़ों हजारों वर्ष बीत गए हैं, भाभी का ये कंठ स्वर उसने सुन ही नहीं पाया था। उस स्वर में विद्वेष या विद्रूष की ज्वाला न थी, वो यथार्थ ही स्नेह की वेदना से कोमल था। मनुष्य के कान उसके बारे में कभी गलती नहीं कर सकते। दिवाकर अभिभूत की तरह चुपचाप उसकी ओर ताकता रहा। किरणमयी ने फिर मुस्कुराकर कहा, सवेरे से अब तक थे कहाँ, जरा सुनो तो। दिवाकर ने धीरे से कहा, नीचे के खंड में। किरणमयी ने कहा, नीचे? इतनी देर तक नीचे क्यों बैठे रहे? एक बार ऊपर आकर कुछ मुंह में डालकर पानी पी जाने की भी फुर्सत नहीं मिली? जवाब में दिवाकर केवल एक तक ताकता ही रहा, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाल सका। किरणमयी ने फिर पूछा, नीचे क्या कर रहे थे? उसके मुख पर बड़ी बहन की वही निर्मल स्नेह की हंसी थी, कंठ में स्नेह प्यार का वैसा ही उलाहना था जो कलकत्ते में पहले उसी से पाकर दिवाकर कृतार्थ हो गया था। आनंद के मारे उसकी आंखों में आंसू भर आए।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।